चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमाम चरणान्तिके। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाशी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में अपना पुनः पुनः प्रणाम जनाता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिसको साधारण रूप से लोग इन देशों में प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं और हमारे गुरु जी से संन्यास लिए हुए हैं। हमारा नाम भी भक्ति वेदांत नारायण है, उनका भी नाम था भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। हमने उनकी संन्यास की सारी प्रक्रियाएं मैंने की थी, अपने हाथों से उनको संन्यास दिलवाया था। किंतु हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझकर उनके चरणों में भी मैं अपनी लाखों लाखों दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूं, क्योंकि वो विदेशों में सर्वत्र सारे पृथ्वी में उन्होंने अपने गुरु जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जिससे कि संसार का सचमुच में कल्याण हो, इसलिए भारत से बिना एक पैसे लिए हुए ही पुरानी पोथी गीता की और करताल हाथ में लिए हुए यहां आए और यहां से फिर सारे अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि समस्त देशों में, विदेशों में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति के अतिरिक्त जीव का कल्याण होना बड़ा भारी कठिन है। शायद आप लोग सभी लोग हमारी हिंदी को समझते हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश में भी कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है,
माइक
में लगा तो भीतर में, तो फिर
नहीं उसकी स्पीड चेंज करो ना, पीछे
से करेगा। अच्छा, हिंदी बोलने से तो करीब करीब आप लोग सभी लोग समझ जाएंगे। ठीक, और यदि जरूरत होगी तो इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन मैं ही कर दूंगा या इन लोगों में से कोई भी कर देंगे। और हमारे साथ में दोस्त हु आर कमिंग विथ मी एवरीवेयर इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड, हियर एंड देयर, ऑलवेज विथ मी, दे आर हियरिंग सो मच, सो आई रिक्वेस्ट देम टू बी सेटिस्फाइड बट व्हाट आई हैव गिवन। टुडे आई वांट टू स्पीक सम हिंदी because I will be happy to speak in my mother tongue. आजकल इस युग की कुछ समस्याएं हैं। सभी प्राणी मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, जानवर, बाघ, सिंह, जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं। सुख के लिए आप लोग भारत को छोड़ करके यहां पर आए, अपने पिता के घर को, स्वदेश भूमि को भी छोड़ करके, जो यहां पर कुछ अर्थ की प्राप्ति होने से हम लोग सुखी हो सके। सुख होने के लिए हम लोग तरह तरह के बचपन से लेकर जीवन के अंत तक सुख के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। एक चींटी भी दीवार पर उठती है, गिर जाती है, उठती है, गिर जाती है, किंतु कोई चीज खाने की लालसा से मिल जाएगा कोई चीज, इसलिए ऊपर तक उठने की चेष्टा करती है। मधुमक्खी जीवन सुखी बनाने के लिए कहां कहां से फूलों फूलों से थोड़ा थोड़ा सा रस लेकर के अपना छत्ता बनाती है, जो जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में हम सुख से रह सकेंगे। हम भी सुख के लिए जन्म लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, घर बनाते हैं, तरह तरह के विद्याओं में एक्सपर्ट होकर के जीवन निर्वाह के लिए चेष्टाएं करते हैं। सुखी होने के लिए हम लोग देश में पार्लियामेंट का गठन करते हैं, सभी हम लोग एक देशवासी सुख से रहें, विश्व सभी एक साथ में सुख से रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना की गई। सब देशों के बड़े बड़े विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग एक जगह मिलकर के विचार करें कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं। कर्मण्यारो मानान दुखते सुखाय च पश्येत पाक विमुर विन्याल मिथुनी चारुणाम नृणाम। हम स्वयं दुख न हो और सुख मिले, इसके लिए हम अकेले भी चेष्टा करते हैं, सामूहिक रूप में भी चेष्टा करते हैं, सब देशों के मिलकर के लोग हम चेष्टाएं करते हैं, स्त्री पति और पत्नी मिलकर के भी चेष्टा करती हैं, फिर बेटे भी मिल जाते हैं, बेटियां भी मिल जाती हैं, इस तरह से सभी लोग सुख के लिए चेष्टा करते हैं, दुख न हो। हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, जितने भी हमारे इंडिवाउस हैं, सब इसलिए होता है जो दुख न मिले सुख। किंतु होता है विपरीत, विवाह शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं है जो बूढ़ा न हो जाए। बचपन में बड़ा अच्छा लगता है, किंतु जब कुछ बड़े हो जाते हैं, 50-60 वर्ष के हो जाते हैं, जब केश पकने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, शरीर में रोग व्याप्त हो जाते हैं, बुढ़ापा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक केश यदि पक गया तो उसको निकाल दिया, किंतु जबकि सारे पकने लगे तो फिर क्या करेंगे। एक दांत टूट गया तो एक ना तो सोने से बंधवा लिया, और यदि सारे दांत टूट गए तो एक दिन मरना भी पड़ता है। इच्छा के विपरीत शरीर को भी छोड़ देना जरूरी है। भगवान सत्य है कि नहीं, उसको हम लोग नहीं देखते हैं, किंतु ये दो चीज जरूरी है। एक बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे के पहले भी बहुत तरह तरह की समस्याएं आएंगी और आती हैं। हम चाहते हैं कि कैसे बुढ़ापा न आए, हम मर न जाए। हम सोचते हैं कि और तो सब मर गए, शायद मैं बचा रहूंगा, इसलिए सारी चेष्टाएं करके एकत्र करते हैं। जब मरने का समय होता है तो हाय हाय करने लगते हैं। हमारे सिकंदर का नाम आप लोग जानते हो, अलेक्जेंडर शायद नाम था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भारत पर आक्रमण किया। ये सोने की चिड़िया है, सोने का अंडा देती है भारत, आक्रमण किया और वहां पर लोगों को परास्त किया। उसके बड़ी अच्छी सेनाएं थी और उसने परास्त करके भारत से जवाहरात, हीरा इत्यादि, जो कहनूर हीरा कहलाया जाता है, न जाने कहां जहां जहां गया वहीं पर विपत्तियां आई, और उसी के लिए छीना झपटी के लिए वो इसी को सुन करके आया था, ले गया। साथ साथ में बड़ी सुंदर सुंदर भारत की जो सुंदरियां हैं, लड़कियां हैं, नई नई विवाहिता या कुमारियां थी, उनको भी पकड़ कर लेकर गया, और अच्छे अच्छे वैद्यों को वहां से ले आया जबरदस्ती, सोने के जवाहरातों से, डायमंडों से उसकी पिटारियां भरी हुई थी। जब बॉर्डर पर आया कश्मीर में कहीं, तो वहीं पर वो बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा जी वो ठीक नहीं हुआ। बहुत से वैद्य डॉक्टर इत्यादि वहां से अपने देश से भी लाया, ठीक नहीं हो सका, एकदम ऐसा हो गया जब मरेगा, आज अभी मरने वाला है। उसने कहा जब तो मैं मर रहा हूं, अब तो बचूंगा नहीं, एक बात करो, हमारा सारा दौलत जो हम लूट करके ले आए हैं, हीरा जवाहरात पन्ना इत्यादि सब को ले आओ, हमारी सेनाएं जनरलों के साथ में खड़ी हो जाए, और जिन सुंदरियों को मैं जबरदस्ती पकड़ करके ले आया हूं, अपने साथ ले जा रहा हूं, उन सबको सामने खड़ा कर दो। उन्होंने कहा जी ये सारी सुंदरियां और ये सारे जवाहरात और डायमंड, ये सब और ये हमारे जनरल हैं, मैं सबको दे दूंगा यदि हमको एक दिन के लिए और आयु बढ़ा दे, जीवित बना दे तो वो तो बहुत दूर की बात है, और मुझे जो दर्द हो रहा है, मैं जो पानी नहीं घूट सकता, श्वास नहीं ले सकता, थोड़ी सी हमारी तकलीफ को कोई कम कर दे, मैं सारा सब कुछ लुटा दूंगा। किंतु कुछ नहीं कर सका, मिनटों में फिर शांत हो गया, सारी चीजें रह गई, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका, उसको शांति नहीं दे सकी। ये समस्या है। आप खाना पीना किया, जीवन का निर्वाह किया, किंतु फिर एक दिन तो जरूर मरना है ना, उसके क्लेशों से हम कैसे बच सकेंगे। दूसरी बात, हम भी तरह तरह के, ये कंप्यूटर का युग अभी कहलाता है, इसके पहले तरह तरह के इन्वेंशन हुए, रसोई घर से लेकर और मेडिकल डिपार्टमेंट तक, इंजीनियरिंग तक, सब विषयों में बड़ी उन्नति हुई। ऐसी उन्नति हुई कि आजकल ऐसे विमान हैं जो हवा की चाल से चलते हैं और 400-500 आदमियों को लेकर के चलते हैं, और थोड़े ही समय में पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचा देंगे। और इससे भी गजब की बात हुई, बड़ी विचित्र बात हुई, वंडरफुल बात हुई, कि अभी अमेरिका में यहां के प्रेसिडेंट क्विंटल बोल रहे हैं, और इसके ठीक विपरीत वहां पर, जहां पर यहां दिन है तो वहां रात है, यहां पर 12 बजे का दिन है तो वहां दिन में रात में 12 बजा है, और वहां के लोग ही टेलीविजन और कैसे में अभी देख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, कैसे पोज है, यहाँ क्रिकेट खेला हो रहा है तो वहां पर सब देख रहे हैं, यहाँ और कोई चीज हो रही है ना, अभी फुटबॉल आरंभ होने वाला है वर्ल्ड का, सब देखने के लिए सब एकदम व्यस्त रहेंगे। सेकंड में खबर पहुंचती है ना? इस तरह से किसी का यदि हार्ट गड़बड़ हो गया तो उसको नया बदल देंगे, यदि जरूरत तो बंदर का भी हार्ट लगा देंगे, कुत्ते का भी मस्तिष्क लेकर के हमारे अंदर में जोड़ देंगे। ऐसी ऐसी विद्याएं सब हुई हैं। किस लिए? तुम्हारे काज भाई अपने सुख के लिए हम लोगों ने किया है, यहां तक कि जानवरों को मारते हैं अपने सुख के लिए, यहां तक कि एटम बम और ये हाइड्रोजन बम किस लिए बना? किस लिए? कि हमारे कंट्री के लोग सुखी रहें और भले ही सब ध्वंस हो जाएं, ये सुख के लिए। विवाह शादी हम किस लिए करते हैं? मिलकर के सुख से रहें। आज इन भैंसों की बदौलत, इनके कारण बहुत सी चीजों में बहुत सी सुविधाएं हुई हैं, क्रांतिकारी ये सब काम हुए हैं, सारी चीजें व्यवस्थाएं हुई हैं। किंतु एक चीज उल्टा हुआ, पति और पत्नी का प्रेम कम हो गया। आज पति का बैंक बैलेंस अलग, पत्नी का अलग, बेटे का अलग, बेटियों का अलग। क्यों? विश्वास नहीं एक दूसरे पर। सबसे न जाने क्यों परस्पर एक डाउट संदेह हो गया है। प्रेम का अब नामो निशाना नहीं रहा। पिता पहले घर गृहस्थी करता था, सोता था जी बुढ़ापे में हमारे बेटे और बेटियां हमें देखेंगी। आज वो ओल्ड हाउस होज में पेपर पढ़ते हैं बेचारे, दिन किसी प्रकार से गुजार करते हैं, कहीं सुख नहीं। एक फ्लैट में कहीं शादी हो रही है और वहीं पर किसी का मरण हो रहा है, किसी का लाश निकल रही है, कोई सहानुभूति करने वाला नहीं है। इतना स्वार्थमय जगत हो गया है कि अब प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। जहां पर बेटों को और बेटियों को अस्पतालों में पालन पोषण किया जाए, मैया अपनी स्तन से दूध से नहीं पिलाएं, उसमें उनमें प्रेम का संचार कहां से होगा? निरस हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीजों के आविष्कार से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र बना, इसमें विभिन्न देशों के लोग हैं, न तो लड़ाइयां कमी, न संदेह कमा, न कुछ हुआ। इस सब का कारण क्या है? एकमात्र प्रेम है, प्रेम की कमी है हमारे यहां, हमारे देशों में। प्रेम सस्ता था, बहुत सस्ता। घासों पर नहीं चलते थे इसलिए कि उसमें घासों पर वजन आ जाएगा। किसी जानवर को नहीं छूते थे, मारते थे। हमारे यहां महाप्रभु के समय में एक आदमी को कोढ़ हुआ, कोढ़ में कीड़े भर गए, कोढ़ समझते हैं लेप्रोसी, और उसमें कीड़े भर गए, सफेद सफेद लंबे लंबे मोटे मोटे कीड़े, और वो निकल रहे थे। कहता जी बेटे तुम क्यों निकल रहे हो? भाग में जाएगा तू मर जाएगा, यहीं पर रहा। और महाप्रभु ने जी उसको अंक में पड़ गया, ऐसा भी चित्र आदमी और एकदम सुंदर बन गया। किसी एक चींटी को भी मारना पाप समझते हैं, यहां पर प्रेम है। इसलिए जो कि और कोई समस्या सुख की पाने के लिए नहीं, प्रेम का विकास होना चाहिए। प्रेम नहीं है परस्पर, कैसा पहले प्रेम था राम और सीता का, द्रौपदी का पांडवों के साथ में कैसा प्रेम था, सावित्री सत्यवान का कैसा प्रेम था, लाखों उदाहरण है इसके। जब इसने अपने पति के लिए अपना सर्वस्व, अपने प्राणों की बलि दे देती थी, और पति अपनी स्त्री के लिए सर्वस्व छोड़ देता था, दोनों एक होते थे। आज सुनते हैं कहीं कहीं कुछ ऐसे भी समाज हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि भगवान का मंत्र जपने से, भजन करने से स्त्रियों के साथ में बातचीत नहीं, अपनी पत्नी के साथ में भी बात नहीं करोगे, पत्नी के लिए पत्नी से अलग हो जाओ, बेटे बेटियों से अलग हो जाओ, यह बहुत गलत बात है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। यदि ऐसा कोई कहता है तो शास्त्र विरोधी बात कहता है। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं, या किसी भी देश के संस्कृति में ऐसी बातें नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे तो क्या ऐसी बात है ये साधु सन्यासी जबकि सन्यास लेगा तब वो स्त्रियों से बातचीत करके स्त्री के साथ में रहेगा, वो बच्चा पैदा करेगा, ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा नहीं। किंतु कलयुग है घोर, ऐसे ही सब बातें सुनने में आती हैं। इसलिए हम प्रेम की शिक्षा कोई घर से देते हैं, चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, घर से। कैसे? पहले अपने पत्नी से प्रेम करना सीखो, पहले पत्नी अपने पति से प्रेम करना सीखे। यदि एक बार दिल दे दिया पति को, अभी पिताजी ने ठीक किया कि रुक्मिणी तेरी शादी कृष्ण से करूंगा, और लाख बाधाएं आएंगी रुक्मिणी मानेगी? एक बार जो दिल दे दिया, शादी नहीं उसके पहले से ही यदि ठीक हो गई, पक्की बात, बस हो गया, वो जीवन भर तक नहीं टूटेगी। ऐसा प्रेम होता था। एक कबूतर के लिए शिवी ने अपने यहां से काट करके मांस वजन करके दिया। एक समय इंद्र और धर्म परीक्षा करने के लिए शिवी के पास में आए, ये धर्म कैसा ये पालन करता है। तो एक बन गया कबूतर, एक बन गया बाज, इंद्र बन गए बाज और ओश धर्म बन गए कबूतर, और कबूतर को खदेड़ता हुआ बाज आया और शिवी के गोदी में गिर गया, श्वास लेने लगा। इतने में बाज आया, बाज ने कहा जी भाई ये हमारा खाद्य है, नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, पाप तुम पर लगेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा जी हमारा शरणागत है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, भले ही अपने जान दे दूंगा उसको नहीं। और शिवी चाहते थे उसको मार डालते अपने बाणों से, किंतु बड़े भद्र भाव से उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्याज ने कहा यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, जो इसका पाप किस कर लगेगा। कहा तो मैंने, अच्छा तब मैं अपने मांस को इसके वजन में बराबर लेकर के देता हूं, तुम खा लो। ये ठीक, उन्होंने वजन यहां से जंघे से मांस काट करके कबूतर के वजन के बराबर दिया, किंतु वो घट गया। फिर उन्होंने उतना दिया, फिर उन्होंने जंघा चढ़ा दिया, फिर उन्होंने इसको भी काट दिया, फिर अपने हाथों को भी काट दिया, तो भी नहीं हुआ तो अपने आप बैठ गए। एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए देखो तो ये प्रेम है ना। इसलिए परस्पर प्रेम ऐसा होना चाहिए। ये प्रेम आएगा कहां से, आएगा कहां से, हम इस चीज को अच्छी तरह से समझें कि हम जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं विश्व में, यहां तक कि पेड़ पौधे, उनमें भी जान है, प्राण है, उनके अंदर में भी प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर में ये प्रेम नहीं है, सब में है। किंतु हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है, इस चीज को याद रखनी चाहिए। और हम एटर्नल सर्वेंट ऑफ द गॉड हैं, भगवान के हम नित्य दास हैं, पार्ट पार्सल हैं। नहीं तो हमें विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, हम लकड़ी और पत्थर नहीं हैं, हमें कुछ होश है, बुद्धि भी है, कुछ विचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो विचार नहीं कर सकते, विचार कर सकते हैं। इसलिए विवेक का विचार जो भगवान ने दिया है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। इसलिए यदि भगवान के साथ में हमारा प्रेम होगा तो अपने आप सब जीवों पर हो जाएगा, तब जीवों से प्रेम होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए पहले हम शुद्ध हों, हमारे अंदर में प्रेम है। ऐसा कोई भी प्राणी है जिसके अंदर में प्रेम नहीं? छुई मुई का एक पौधा होता है, देखा आप लोगों ने, हाथ से स्पर्श करने से वो सिकुड़ जाता है, छोड़ दो फिर वो हो जाता है। उसमें भी सेंसेशन है, सुख दुखी अनुभूति है। इसलिए हमारे अंदर में भी प्रेम है, किंतु अभी तक स्वार्थ है, अपने में सीमित रहते हैं। यदि आज अमेरिका से इंडिया का युद्ध लग जाएगा तो हमारे इंडिया वाले सभी लोग इंडिया का पक्ष लेंगे, यदि कुछ नहीं कर सकेंगे तो भीतर से भी इंडिया के लिए कुछ भावना रहेगी। यदि इंडिया में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस से लड़ाई हो गई तो हम अपने प्रोविंस को प्रायोरिटी देंगे, यदि एक प्रोविंस में भी अपने गांव से दूसरे गांव से लड़ाई हो गई तो अपने गांव को देंगे, अपने गांव में भी अपने बाप बेटे अपने परिवार से दूसरे की लड़ाई हुई तो अपने परिवार में आ जाएंगे, और अपने परिवार में भी यदि हमारी स्त्री से और परिवार वालों हमारे भाई की स्त्री का झगड़ा होता है या भाई का, तो अपनी स्त्री का पक्ष ले लेंगे। बेटे से और मैया से झगड़ा लगता है तो हम अपनी पत्नी का ही पक्ष लेंगे, ऐसा ही उचित है, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी है। और यदि पत्नी में और हम में झगड़ा होता है तो फिर क्या करेंगे? अपना पक्ष। किंतु अपने शरीर में ही यदि किसी का हाथ सड़ रहा हो और डॉक्टर ने परामर्श किया कि ये नहीं काटने से तू कल मरेगा, गैंग्रीन या क्या कहते हैं हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हाथ को काटेंगे कि नहीं? हाथ को भी काट देंगे। यदि हमारी आत्मा सुखी नहीं हो रही है, बड़ी विचलित हो रही है, तो हम इस शरीर को भी छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किस लिए? अब इतना दुख नहीं सहा जाता इस शरीर से, शरीर को भी छोड़ देते हैं। इस शरीर में दो चीजें हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है। परमात्मा के हमारे मूल हैं, इसलिए सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रेम जरूर है। इसलिए वहां तक अब अपने तक आया, मैं अपने लिए सबको छोड़ सकता हूं, शरीर भी छोड़ सकता हूं। मैं कौन हूं? ये शरीर नहीं है, पहले बेटा बेटी हो यह समझो। ये जो शरीर दिखाई पड़ता है ये हार्ड मांस का एक शरीर है, कपड़ा है। जितना भी तुम करो एक न एक दिन जरूर इसे छोड़ना है, जरूर छोड़ना है। इसलिए इस जगत में आकर के यदि हमने इसको थोड़ा सा भी रियलाइज किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, ये दुख जाने में भी इच्छा करने पर भी क्यों नहीं जाता? हम इच्छा करते हैं कि हम सब समय 21-22 वर्ष की किशोरी बनी रहें और हम वैसे नौजवान बने रहें, किंतु हो नहीं पाता। अस्पतालों में हम जब जाते हैं तो केवल भीड़ लोगों की, कोई कैसे रो, कोई किसी का रो, किसी का चल नहीं पाता, कोई कुछ है कोई कुछ है, लाखों तरह के रोग। वहां पर जाएंगे तो नरक का थोड़ा सा देखाएंगे, ये कैसा नरक होता है, काट रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए पहले हमको रियलाइज करना होगा कि मैं कौन हूं, पहला ये प्रश्न। यदि शरीर ही सर्वस्व है तो शरीर को सुखी करने से तो हम सुखी हो जाते, किंतु नहीं होते हैं। इसलिए हम शरीर नहीं है, पहली बात तो ये। एक छोटी सी कहानी आपको बतलाऊं। एक कोई राजा थे, बहुत धनी आदमी, उनके घर में कोई संत गए उन्होंने कहा भाई मैं राजा से मिलना चाहता हूं एक सेकंड के लिए। दरबान ने कहा जे ठहर जाइए, मैं अभी खबर दे रहा हूं। उन्होंने खबर दी राजा को। राजा ने कहा जब आया है तो कुछ मांगने के लिए जरूर आया होगा, उसको कह दो जो आज नहीं दो दिन के बाद में उसको डेट एक दे दो। अच्छा आप परसों आएंगे। फिर परसों गए तो कहा जो वो आ गया फिर। अच्छा उसको कह दो आज मुझे समय नहीं है, परसों फिर मिल जाएगा। तो तीन चार दिन ऐसे ही उनको लौट आया। चौथे दिन वो आया, जब राजा नहीं मिले तो उसने कहा जिसे ये नहीं मिलेगा, इसका हृदय पत्थर जैसा है। उनके पत्नी के पास में खबर भेजवाया महारानी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं एक मिनट के लिए। उनका हृदय थोड़ा सा दयालु था, उन्होंने बुलाया। अब बुला करके महात्मा जी किस लिए आपकी क्या सेवा करूं? तो सेवा नहीं कुछ करनी है माता जी, मैं ये कहने के लिए आया कि राजा बहुत अच्छे हैं किंतु उनका अंतिम दिन 15 दिन में आ रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं, इसलिए 15 दिन के बाद में अब जीवित किसी तरह से नहीं रह सकते हैं, ये अब जरूर मरेंगे उस दिन, इसलिए आप लोगों को जो कुछ करना है कर लीजिए। ये कह करके वो तो बड़ी विचलित हो गई, होश आवास उड़ गए और ये उठ करके वहां से चुपचाप चले आए महात्मा जी। अब उसने राजा को उसी समय बुलाया, राजा एक सेकंड की देरी नहीं की, इनके लिए तो 7 दिन में नहीं मिले किंतु वहां पर मिनटों नहीं लगे और मिल गए। क्या बात है क्यों बुलाया हमको? तो ये महात्मा एक आए थे, वो बिना बुलाए बोले जी हम मैं तो एक बहुत ज्योतिषी हूं और आप जरूर पढ़ ये कहने के लिए मैं आया था।